ओम शांति। कल हम सुना रहे थे कि कैसे अपने अंदर शक्ति भरना है तो परमात्मा से हमको लिंक या कनेक्शन जोड़ना है। तो अभी तक अपने अंदर कितनी शक्ति है, तो वो कैसे हम पता करें, क्योंकि ये तो शरीर की शक्ति की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। शरीर में कितनी ताकत है नहीं है वो तो समझ में आ जाता है, रोज के जो भी कार्य या व्यवहार में जो कुछ भी है समझ में आता है कि हम इतना कर पाते इतना नहीं कर पाते। परंतु आत्मा की शक्ति की बात आती है, वो परिस्थिति को जब हम सामना करते हैं, जो परिस्थिति सामने आती तब पता पड़ता है हमारे अंदर ये सहन शक्ति नहीं है, ये सामना करने की शक्ति नहीं है, निर्णय की शक्ति की कमी है, परखने की शक्ति नहीं है, तो इसमें हमको घाटा पड़ गया। तो बाद में पता पड़ता है, परंतु परिस्थिति को सामना करने के बाद पता करना ये टू लेट हो जाता है ना, क्योंकि वो समय पे फिर मन की भी कंट्रोल नहीं रहती, स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, कुछ भी हमको करना है या अपने आप को शांत धीरज दृढ़ जो भी हमको अपनाना है वो बहुत मुश्किल लगता है। तो क्यों ना हम पहले से जान ले हमारे अंदर कितनी शक्ति है। जैसे बैंक में हमारे पास कितने पैसे हैं ये जानकारी तो सबको होती है ना, तो उस अनुसार फिर आप खर्चा करेंगे, कितना करना है कितना नहीं करना कितना बचाना है। ऐसे ही यहाँ भी आत्मा के अंदर कितना जमा है ये देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। फिर आप पूछेंगे ये कैसे हम जान सकेंगे, क्योंकि जैसे कहते हैं शरीर की उम्र के हिसाब से एक्टिविटी इतना नहीं कर सकते जितना जो यंग जो लोग करते हैं, जो जॉगिंग पे जाते किलोमीटर किलोमीटर जॉगिंग करके जाते कोई जो यंग होते। थोड़ा उम्र बढ़ने के बाद जैसे यंग जब आप बचपन में जब करते थे अभी हम आप नहीं कर पाएंगे। परसों कोई सुना रहे थे बहन जी मैं रात को इतना नहीं खा पा रहा हूँ, मैं नहीं खाना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा है क्योंकि ये शरीर के लिए अच्छा है, तो कह रही शरीर के लिए अच्छा है वो ठीक है पर मैं हजम भी नहीं कर पा रहा हूँ ना। पहले तो अच्छा जो भी खा लो जैसे भी खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी नहीं हो पा रहा है, मैं ऐसा कुछ भी हेवी चीज नहीं खा पा रहा हूँ तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, लाइट कर रहा हूँ। अच्छी बात है। तो ऐसे शरीर के हिसाब से भी हम देखेंगे, उम्र के हिसाब से शरीर भी इतना ही ताकत कम या ज्यादा वो समझ में आता है। तो आत्मा का एज क्या हुई अभी, आप कहेंगे कि आत्मा का एज होता है क्या। आप देखिए शरीर तो विनाशी है ना, शरीर का भी उम्र लगभग समझो 100 इयर्स तक जनरली एवरेज आप ले लो तो 100 इयर्स तक कोई रहेंगे मैक्सिमम, कोई तो उससे भी ऊपर। हमारी दादी जी तो 103 है। तो उसके बाद जो आत्मा, आत्मा तो अविनाशी है ना, शरीर विनाशी है, तो आत्मा जब निकलती है शरीर से तो अविनाशी है, उसकी मृत्यु कभी हो नहीं सकती है। तो वो शरीर छोड़ के क्या करती है, दूसरा शरीर का आधार जरूर लेती है, फिर उसका जन्म होगा, पर दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरा परिवार मिलेगा, दूसरा सब कुछ। जगह भी बदली हो सकती है, कई बार धर्म भी बदल सकता है, ऐसे करके। और अपना जो जेंडर है वो भी बदल सकता है, कोई स्त्री पुरुष बन सकता, पुरुष स्त्री बन सकता। तो एक शरीर छोड़कर दूसरे लिए, फिर दूसरे छोड़ के फिर तीसरे लिए, तीसरे छोड़कर फिर छोटे, तो ये चलता रहेगा। परंतु हमको ये सोचना है कि ये शुरुआत है क्या, अभी का जो समय है, अभी के जो शरीर में आप हो, ये शरीर का जो शुरुआत है, ये आपका शुरुआत है क्या, या अंत है, या मध्य में हो, कहां हो? आप देखेंगे कि ये शुरुआत हो ही नहीं सकता है। एक साल पहले हम किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा बहन जी मेरा बचपन इतना कठिन था, बहुत स्ट्रगल किया हमने, 5 साल की उम्र से हम जानते हैं हमारे ऊपर क्या पीता होगा, मना बहुत गरीब परिवार, खाने के लिए भी मुश्किल, सब ऐसा। कईयों को गरीबी नहीं होगी परंतु मानसिक रीति से भी टेंशन, बचपन से टेंशन होता है। कईयों को बचपन से ही एक प्रकार की डर बैठी रहती है। तो ऐसा बचपन है, मेजोरिटी को बचपन ऐसा कोई देख नहीं कहेंगे तो बहुत हैप्पीएस्ट डेज थे, ऐसा कोई नहीं कहेंगे, ठीक थे, माँ बाप के साथ थे, ठीक है, पर ऐसा नहीं बचपन में कभी दुखी नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत ही नहीं हुई होंगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपकी शुरुआत, आत्मा की शुरुआत ये जन्म के बचपन से है, तो आपको कोई भी दुख या दर्द ये सब महसूस होना नहीं चाहिए, सुख ही सुख हो, तो कहेंगे ये आपका शुरुआत है। कोई भी चीज आप ले लो, ये टेबल ही ले लो, समझो ये टेबल को लेकर आए हैं तो एक 4 साल हुए होंगे, समझो आप 4 साल में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ईयर तो ये एकदम फर्स्ट क्लास होता होगा, इसमें कोई भी कमी नहीं है, अच्छी तरह वो होगा। सेकेंड स्टेज में बोलेंगे ठीक है, नॉट सो मच प्रॉब्लम, पर कुछ थोड़ा स्क्रैचेस, मना वो भी नहीं है, ठीक है। थर्ड स्टेज में, वो थर्ड ईयर में लगेगा कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें कुछ स्क्रैचेस है, ये है, वो है, जो भी है, दिखने में तो नया तो नहीं लग रहा है। फोर्थ ईयर में बोलेंगे ये तो मना रखेंगे तो भी हिलता है, कंफर्टेबल नहीं है। तो हर चीज के पहले एकदम बेस्ट से फिर वस्त होती है हर चीज। आत्मा के लिए भी पवित्रता से अपवित्र, नए से पुराना तो होना ही है। आत्मा ही नहीं, हर चीज प्रकृति में हर चीज पुराने से नहीं होती है, नए से पुरानी होती है। ये कुदरती नियम है। तो ये शुरुआत नहीं है, तो इसके पहले भी हमारे जन्म होंगे, बहुत सारे जन्म होंगे, क्योंकि हम देखेंगे कई अपने अंदर के संस्कार है जो माँ बाप से नहीं मिले हैं, जो बाहर दुनिया से भी नहीं, कहां से भी सीखे नहीं है, वो अपने आप बचपन से है। हमने देखा है कि 1 साल के बच्चे में इतना क्रोध, हमने कहा है 1 साल में हम कहां सीखते, इतना प्रैक्टिस कहां होता है कि इतना स्ट्रांग हो जाए। संस्कार बनता है प्रैक्टिस से, है ना, बार बार कर्मों में लाने से फिर वो संस्कार बनता है। तो 1 साल की बच्ची में उसको क्या है करके कारण उतना क्रोध, पर ऐसे नहीं है सभी 1 साल के बच्चों में क्रोध होगा, नहीं, कई एकदम शांत होते। तो अपने अपने संस्कार लेकर आते, अच्छे व बुरे। एक मुंबई में एक लड़की है, 10-12 साल की, वो जैसे बड़े होते हैं ना वैसे बात करते हैं, उनका व्यवहार है, उनके सब बहुत व्यवहार शुद्धि है उस लड़की में, उनके फादर को रिमाइंड करते, सबको मिलके आओ, चलो सेंटर जाओ, अब बाहर गांव जा रहे हो, अब मेडिटेशन रूम में बैठ के जाओ, अच्छे संकल्प लेकर जाओ, ऐसे करके समझाती अपने पापा को ही। है तो 12 11 वो जो भी साल की है, छोटी है, फिर भी उसके अंदर ऐसे हैं। और जरूर आकर मिलेंगी तो बहुत प्यार से मिलेगी और कहेंगी बहुत दिन हो गए आपको मिलके, आप कब आए, कब जा रहे हो, हम जरूर, अच्छा आप जाने से पहले हम जरूर आकर मिलके जाएंगे, ऐसे जब बड़े बात करते वैसे बात करते। और आप देखे तो उनके माँ बाप में ऐसे नहीं, संस्कार ऐसे नहीं, अच्छे हैं माँ बाप अच्छे हैं, परंतु इस प्रकार के विचार वाले नहीं है। तो ये संस्कार जो उनके अंदर वो कोई नहीं सिखाए, वो अपने आप उन पिछले जन्मों से आया हुआ है, उनका जो प्रैक्टिस किया हुआ है वो जन्मों का है। हम देखते अपने अंदर कई ऐसे संस्कार है हम मिटाना चाहेंगे, तुमने भी नहीं मिटता है। हम सोचेंगे ये क्यों ऐसा अपने अंदर ये थॉट प्रोसेस है। बस रिसेंटली एक माता कह रही थी, मेरे अंदर इतनी ईर्ष्या है बहन जी, इतनी ईर्ष्या है, कोई खुश है तो मैं देख नहीं सकती, ये क्या है, ये उनको ये खराब लग रहा है, बहुत ईर्ष्या है। मना कोई भी संस्कार बहुत कड़ा होता है तो वो माता खुद कह रही थी, मुझे लगता है ये बहुत जन्मों का है, ये अभी का नहीं है, बहुत जन्मों से चला आ रहा है, इसलिए इतना कड़ा, इतना स्ट्रांग है। गलत समझने के बाद भी वो लगातार अंदर चलता जा रहा है और व्यवहार में भी आ रहा है। तो मतलब हमारे बहुत जन्म इसके पहले भी थे, इसके बाद भी होंगे। तो फिर हमारा जो जन्म मरण का जो भी जो जर्नी है, इसको समझने की अब कोशिश करेंगे एक स्ट्रेट लाइन की रीति से। इन जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म, लगेगा ये क्या चल रहा है, कब तक, कितने जन्म लिए, कितने जन्म लेना, क्यों लेना, क्या इसमें फायदा है, ऐसे कईयों को फिर थॉट आता है ये क्या है। परंतु ये स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं, जन्म मरण जन्म मरण ऐसा नहीं है। आप देखो कोई भी चीज कुदरत में, इट इज साइक्लिक, चक्र है, कहते ना जन्म मरण का चक्र। अभी सुबह हुई, दोपहर, फिर शाम, फिर रात। रात होएंगी क्या हम सोचेंगे बस अभी खत्म, सब खत्म हो गया, नहीं, फिर सुबह होएंगे, फिर सुबह होएंगे, तो चक्र है। मंडे होगा, फिर संडे होगा, फिर मंडे होगा, अच्छा जनवरी होगी, फिर दिसंबर होगा, फिर जनवरी होएंगे, साइकिल है ना। अभी बारिश का मौसम है, इसके बाद फिर ठंडी, फिर उसके बाद गर्मी, यही तो फिर चक्र। हर चीज कुदरत में चक्कर, इट इज ऑल इन अ साइक्लिक फैशन। ऐसी आप देखो आत्मा का ही जन्म मरण का चक्र है। चक्र तो जरूर है, पर इसमें भी एक बिगिनिंग है, शुरुआत है, एक अंत भी है। जैसे आप देखेंगे सिनेमा, आप कोई भी सिनेमा जाके, थिएटर में जाके देखेंगे, समझो तो सुबह का पता नहीं कितने शोज होते हैं, समझो 4 शोज है दिन में, पूरे दिन में 4 शोज है, 4 शोज वही के वही सेम टू सेम रिपीट होता है ना, जैसे कि वैसे रिपीट होता है, सुबह का, फिर दोपहर का, फिर शाम का, फिर रात का, वही टू वही। और सिनेमा में क्या होता है, पहले जो सीन है कि सभी खुश है, एक दूसरों से प्यार है, अप्राप्ति कुछ भी नहीं है, सब अच्छे हैं, फिर नेक्स्ट सीन, सेकंड सीन होती है जिसमें आप इंतजार करते कुछ प्रॉब्लम होगा अभी करके आप इंतजार करते, क्योंकि स्टोरी में तो ट्विस्ट तो होनी चाहिए। तो थर्ड सीन होती है, उसमें प्रॉब्लम शुरू होता है, कुछ ना कुछ होता है, जो वहां का विलन होता है उसकी एंट्री होती है तो उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो चौथा जो सीन है फोर्थ सीन में तो इतना घमसान माना, इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि लड़ाई ये वो, और वो विलन की वजह से बहुत सारे सिचुएशंस आ जाते हैं। यही होता है ना हर सिनेमा में स्टोरी। फिर पांचवा एक छोटा सा सीन होता है जहां हीरो आता है, वो हीरो जाके वो विलन को मारता है जो भी करता है, और जो सत्यता की विजय होती है उनके, वो हीरो की विजय, तो फिर हैप्पी डेज आर हियर अगेन, माना फिर से वही खुशी के दिन फिर वापस आ जाते और फर्स्ट सीन में फिर वापस आ जाते। ऐसे ही होता है ना स्टोरी, ऐसे होता है। तो आत्मा की, हाँ आत्मा की जो भी जर्नी है वो भी इट इज लाइक दिस साइकिल, फर्स्ट परफेक्ट, कुछ भी कमी नहीं है, प्यूरिटी पीस, जहां पवित्रता है वह सुख शांति संपत्ति सब होती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में स्टिल प्यूरिटी, बट पहले जैसा पीरियड में जितनी प्यूरिटी उतनी नहीं रहेंगी, थोड़ी कम होंगी, ऐसे करके थर्ड, ऐसे करके फोर्थ, थर्ड में इम्प्यूरिटी, फोर्थ में टोटल इम्प्यूरिटी, फिर लास्ट में छोटा सा फिफ्थ सीन, उसमें परिवर्तन, ये होता है। हम इसको एक ड्रामा से कंपेयर करते हैं। ड्रामा में जैसे हर एक का अपना अपना पार्ट होता है, अपना अपना जो वस्त्र होता है पहन के अपना अपना पार्ट बजाते हैं। ये पूरे जो भी ड्रामा में जैसे सीन्स चलते जा रहे हैं, फर्स्ट सीन में थोड़े होते, सेकंड सीन में थोड़े ज्यादा आते, थर्ड सीन में, फिर फोर्थ सीन में सब भी आ जाते स्टेज पे। तो हम सभी कौन हैं? हम सभी एक्टर्स हैं, एक्टर्स, अपना अपना पार्ट हम बजा रहे हैं। तो ना हम आपका पार्ट बजा सकते, ना आप हमारा पार्ट बजा सकते, ना हमारा वस्त्र मना ये शरीर ना आप ले सकते हो, आपका शरीर हम नहीं ले सकते, पर वो ड्रामा में क्या है वो चेंज बदली अदली बदली कर सकते। कोई आके थोड़ा मैं बीमार हूं मेरा रोल तुम ले लो, तो कोई लेके ले कर सकते, पर यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा भी कोई नहीं है, पर हम आप बन नहीं सकते, आप हम नहीं बन सकते, इससे कंपेयर करना वेस्ट है। जो आपके अनुभव है, जो आपका पास्ट है, जो आपके विशिष्टता, आपके गुण, आपकी शक्तियां, वो किसी से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, कभी नहीं होंगे। इतने मिलियन प्रजा पूरे विश्व में है, पर किसी के भी फीचर्स या अंदर आत्मा के जो गुण है, शक्तियां, जो भी आपकी विशिष्टता अनुभव है, ये किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, सब अलग है, सब अलग है। आप देखिए कुछ ट्विंस भी होंगे ना, शरीर उनका थोड़ा मिलता है, फिर भी उनमें कुछ चेंज होता है, थोड़ा फर्क तो होता है, वो माँ बाप पहचान लेते कि क्या फर्क है दोनों में। इस प्रकार से आप देखो तो हम कितना अलग है, सभी अलग है। तो ये ड्रामा हम सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो आप पूछेंगे चलो ये ड्रामा है तो ड्रामा का डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर तो कोई होंगे, कहेंगे स्वयं परमात्मा ही ये ड्रामा का डायरेक्टर है। तो कई पूछते बहन जी भगवान खुद डायरेक्टर है, और आप देखेंगे कई दुखी है, कई गरीब है, कई उनको इतना दर्द है, कितना बीमारियां है, कितने सारी बातें चल रही है, तो ये सब वो भगवान ऐसे क्यों ड्रामा रचे जो इतने लोग खुश नहीं है और कई खुश है, तो ऐसा क्यों होता है? समान रीति से हो ना, ऐसा ड्रामा हो। अब आप देखिए डायरेक्टर का रोल क्या होता है? डायरेक्टर का रोल स्टेज पर आने से पहले होता है। स्टेज के ऊपर जब ऑडियंस ऐसे बैठे रहते उनके सामने डायरेक्टर उनको डायरेक्ट नहीं करेगा, पहले से डायरेक्शन होगा, स्टेज के पीछे डायरेक्शन होगा कि आपका डायलॉग ये है, आपको ये बोलना है, आप ये नहीं बोलना है, आप ऐसे एक्ट करो, ऐसे करके वो सिखाते समझाते उस स्टेज पर आने से पहले, जब उनका सब कुछ वो वहां समझ लेते, सीख लेते, स्टेज पर आते, एक्ट शुरू होती है, तो उन पर कोई टमाटर फेंकते या फूल फेंकेंगे किस पर आधारित है? डायरेक्टर पर या एक्टर पर? बताइए, एक्टर पर है ना। तो आप डायलॉग भूल गए, आप किसी और के डायलॉग बोल रहे हो, आपको जैसे वहां एक्ट करना वह नहीं कर रहे हो, तो किसको आप ब्लेम करेंगे? डायरेक्टर को थोड़ी ना ब्लेम करेंगे, वो स्टेज पर नहीं आ सकते, स्टेज के पीछे रहेंगे तो कई डायरेक्टर तो ऑडियंस पे बैठ के देखेंगे। हाँ, आपके थोड़ा उनकी तरफ आपकी दृष्टि जाएंगी, डायरेक्टर की तरफ शायद, और डायरेक्टर आपको डायरेक्शन दे, चलो ये तुम रॉन्ग बोल रहे हो, ये नहीं बोलो करके आप प्रॉम्प्ट भी करें, पर देखेंगे नहीं तो क्या करें? सभी को पता है क्या रॉन्ग है क्या राइट है, कोई नहीं है दुनिया में जो कहेंगे हमको पता नहीं है ऐसा बोलना रॉन्ग है। हमारा एक छोटी सी बच्ची 3 साल की होंगी, अपने माँ बाप जहां बैठते वहीं बैठ के खेलती है, नए घर में शिफ्ट हुए तो वो घर में जो डाइनिंग रूम है ना, वहां डाइनिंग टेबल अभी तक आया नहीं, जो ऑर्डर किए अभी तक आया ही नहीं, तो वहां खाली है, कमरा खाली है, तो कोने में उनकी मदर फादर ने एक छोटा सा कुर्सी रखे है बच्ची के लिए। जब भी ये हैरान करते हैं माँ बाप को, जो से मना रोती है, कुछ भी टेंट्रम जैसा कैद करते हैं ना वो करती है, तो उनको टाइम आउट करके वहां बिठाते, देखो पनिशमेंट है तुम्हारे लिए, तुम ऐसे हैरान माँ बाप को कर रहे हो, तुम रोते हो, ये करते हो, तो जाके वहां बैठ जाओ। तो 5 मिनट बच्चे के लिए बड़ा पनिशमेंट है वहां बैठना, ना खेलना ना कुछ, वहां बैठना 5 मिनट भी बहुत है, तो वहां बिठा देते थे बच्चे को। तो एक दिन ऐसे खेल रही थी, खेलते खेलते उनकी जो फादर है वहां सोफा पर सो गए थे, संडे का दिन था, सो गए, तो वो स्टिकर होते हैं ना जो चिपकाने वाले स्टिकर, उसके साथ खेल रही थी। खेलते खेलते उस स्टिकर्स को लेके उनके फादर पर चिपकाने लगी, पूरा सिर से लेकर पांव तक चिपकाती गई, और फादर तो बहुत गहरी नींद में, उनको पता भी नहीं, वो बच्ची ऐसा करती रही तो उनको आदत भी होंगी, तो फिर वो उठे भी नहीं, अच्छी तरह सो गए और पूरा चिपकाए। तो फिर जब वो उठे तो दिखा पड़ा इतने सारे पूरे शरीर पर लगा हुआ है, तो निकालने की कोशिश करे तो उसमें तो जो है ना गम होता है ना वो बहुत स्ट्रांग है, तो निकालने में दर्द भी हो रहा था। तो उनकी जो वाइफ आके वो पानी डालने लगी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निकालने लगी, तो फादर तो बोलेंगे ना, ओ आ ऐसे बोलेंगे ना, तो एकदम से देखने लगे कि ये बच्ची कहाँ, बच्ची वहीं बैठी रहती है, इनके साथ ही रहती, अभी देखिए कहाँ है कहाँ, पूरा जाके ढूंढे तो वो कमरे में, डाइनिंग रूम के कमरे में कुर्सी में अपने आप जाके बैठ गई, 3 साल की बच्ची। और जाके पूछने लगे, अरे दिया तुम वहां क्यों बैठी है? तो कहने लगी, आई गेव पेन टू डैडी, मैंने पापा को दर्द दिया तो मैं बैठ गई यहाँ, क्योंकि मैंने गलत किया। अब 3 साल की बच्ची को पता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो बड़ों को नहीं पता होगा क्या? अच्छी तरह पता है, कंट्रोल में नहीं है तुमने वो कर लेते, पर सबको पता है कि ये राइट है रॉन्ग है। तो हम कभी भगवान को हम ब्लेम नहीं कर सकते, तो पता नहीं था ऐसा हो गया, नहीं ऐसा कैसे डायरेक्शन किया, हमारे कर्मों का हमको फल मिलता है। जो परमात्मा ने हमको डायलॉग सिखाया वो बोलो तो आपको फूल सभी बरसाएंगे, आपके कर्म ऐसे हो जो सब फूल, जिसको भी जो भी हो रहा है वो अपने कर्मों के हिसाब से हो रहा है, वो परमात्मा का कुछ भी ब्लेम इसमें नहीं है, वो तो अच्छे कर्म ही दिखाएंगे। तो रही बात ड्रामा की, ड्रामा में हर सीन जो है वो एक्यूरेट है, एक्यूरेट। अब कहेंगे कुछ खराब भी होता है, तो हाँ खराब भी हो तो भी वो एक्यूरेट है, उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि उसमें हम कहते हैं हमको बहुत दुख होता है, कोई सीन हमारे सामने आती है दुखदाई होती है, किसी की मृत्यु होती है, किसी का कुछ होता है, कोई बीमारी आती, कितनी सारी बातें आती है, घाटा पड़ जाता है बिजनेस में, पूरा लॉस हो जाता है, ये सब सीन जो होते हैं, तो हम क्या करें, उसमें क्या अच्छाई है? नहीं, हर सीन में कल्याण है। आपको वो कल्याण जो है उसके पीछे नहीं दिखाई पड़ता है तो भी दुख होता है। इसलिए कहते हैं कल्याणकारी ये ड्रामा है, जो भी सीन अपनी चल रही है हमको प्रिपेयर करता है, हर सीन अपने जीवन में हमको ट्रेनिंग देता है, हमको बनाता है, कहते हमको सिखाने के लिए हमारे बच्चे पैदा हुई, ऐसे कहते क्या सिखाने के लिए? भाई साहब मैंने पूछा उनको कि हमको धीरज सिखाने के लिए हमारे बच्चे पैदा हुई, हमारे अंदर धीरज था ही नहीं तो इसके साथ इतना धीरज रखना पड़ता है, तो हमको सिखाने के लिए आई है, तो कुछ ना कुछ हमको बनाती है, हर सीन हमको बनाती है। जैसे मैं, जैसे हर सीन में कल्याण है, इस बात पर मैं अपना अनुभव सुनाऊंगी। ये ज्ञान में आने के बाद एक दो साल हुए होंगे, दो तीन साल हुए होंगे, तो फिर हमको हमारे फादर ने, वो इस ज्ञान में नहीं थे तो उनको था कि मैं पढ़ूं, तो कहते थे कि क्यों ना तुम एम फिल करो, अब एमए हो गए तो एम फिल करो, तो जाओ दूसरी स्टेट में, एक यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहां जाके पढ़ो। तो हमने कहा भी बोल रहे हैं तो फिर एंट्रेंस लिखना पड़ेगा, तो हमें एंट्रेंस लिखे, तो एंट्रेंस लिखे तो अपना नाम आया, हमने कहा को तो बहुत खुशी हुई, चलो हम पढ़ेंगे अच्छी तरह वहां सेट हो जाएंगे, ऐसे करके हम सोचते थे। तो जब एंट्रेंस हो गया तो पर्सनल इंटरव्यू होती है, उसके बाद बैठ के पूछेंगे तुमको ये सब्जेक्ट में क्यों पढ़ना है, क्या करना है, ऐसे करके पूछते हैं। तो हमारे सेंटर की जो बहन है उन्होंने कहा कि ऐसे तुमको वहां रहना है, ये जगह पे रहना है और पढ़ना है, ऐसे करके हमको डायरेक्ट ऑलरेडी मैं बात भी कर ली कि उन्होंने डायरेक्शन भी दिया कहाँ रहना कैसे रहना, वो सब समझ के मैं तैयार हो गई और इंटरव्यू के लिए बैठी थी, अभी जाके फीस पे करना है, और मेरा नाम ही नहीं बुला रहे थे, सबके नाम बुलाए जो भी लिस्ट में, और मेरा नाम तो कोई बुलाया नहीं। मैंने कहा ये क्या हो क्या, जाके मैंने पूछा अरे भाई मेरा नाम क्यों नहीं, उन्होंने कहा आपका सेकंड जो एमए का जो रिजल्ट है वो सर्टिफिकेट है ही नहीं, जब तक आपका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है तो हम आपको सीट नहीं दे सकते, इसलिए हम इंटरव्यू भी नहीं लेंगे। हमने कहा देखो हमने इतना मार्क्स हमको फर्स्ट ईयर में मिला, इस सेकेंड ईयर में थोड़ी ना हम फेल होंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम ही लेट हुआ था ना, तो वो नेक्स्ट मंथ उसका रिजल्ट आएंगे, अभी नहीं है, हमारा दूसरा स्टेट है ना। तो उन्होंने कहा नहीं आपका स्टेट का जो भी है, पर हम ऐसे हमारा पॉलिसी है पूरा, हमको आपका सर्टिफिकेट चाहिए तभी आपको इंटरव्यू में बिठा सकते हैं, तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करो। हमने कहा बाबा फिर से पढ़ना फिर से करना नेक्स्ट ईयर, मैंने कहा ये किया है, इसमें कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया क्यों ऐसा है। तो मैं बैठ के जो हमको आके पिकअप करने वाले थे उनको हमने बताया लेट आना, तो पर वो यार तो कोई है नहीं, तो जाके मैं बैठ गई बाहर। तो जैसे मैं बात कर रही थी भगवान से, जैसे बात कर रही थी, बात करते करते मैंने कहा इसका जो सिचुएशन का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है इसका, इसमें कल्याण क्या है, इसमें क्या बेनिफिट है, ये सीट नहीं मिलना इसमें क्या बेनिफिट, मुझे वो टाइम पे समझ में नहीं आया। तो मुझे लगा अपने दिल में ऐसा लगा कि बड़ा ऐसा स्टेज है, स्टेज के सामने स्क्रीन होती है ना, जैसा पर्दा है पूरा पर्दा लगा हुआ है, और मैं सोच रही हूँ पर्दा कब खुले और मैं देखूं कि क्यों ऐसा हुआ है, बार बार मैं ऐसे सोच रही हूँ। तो मुझे लगा कि बाबा परमात्मा खुद मुझसे कह रहे कि देखो कुछ भी रेडी नहीं है, स्टेज पे तैयारी हो रही है, सामने स्क्रीन है तो वो खोलेगा तो भी आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि स्टेज प्रिपेयर्ड नहीं है, तैयार नहीं है। तो वेट एंड सी, आप इंतजार करो फिर उसके बाद देखो, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने वही टाइम पे फुल स्टॉप लगा दी, फिर हैदराबाद वापस आ गई। तो वहां एक क्लिनिक था, वो साइकेट्रिक क्लिनिक होता है ना, तो जिसको मानसिक बीमारियां होती वहां आके काउंसलिंग करेंगे, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको जो भी सुनाते हम लिख के फिर डॉक्टर को बताते थे, डॉक्टर शाम को आके बैठते थे। तो हमारा तो वही था, जो भी आते थे उनको पूछते तब का क्या प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन है कि क्या है, कैसा चल रहा है, ये सब लिखते रहे। तो एक दिन एक लड़की को लेकर आए, 17 साल की लड़की थी। तो आते ही हमने पूछा क्या प्रॉब्लम है, कब से आपको क्या मैंने अंदर से किसी फीलिंग है ये वो। उसका प्रॉब्लम था कि उसको माना वो हैदराबाद की ओल्ड सिटी से आई हुई थी, उसको किसी ने रेप किया है, तो वो बहुत डिप्रेशन में थी। तो उनकी माँ बार बार कहती चलो बेटा बोलो, वो जो भी पूछ रहे मैडम उसको जवाब दो, पर क्या है ना कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही थी, ऐसा उतरा हुआ चेहरा था, नेचुरली वो क्या सुनेगी। तो फिर मुझे समझ में आ गया, मैं लिख दी जो भी लिख के, मैं वहां टेबल पे रख के रिपोर्ट, और हर केस के लिए वहां रिसेप्शनिस्ट को एक एनवलप देते थे, एक केस है इतने पैसे, एक केस है इतने पैसे, ऐसा करके। तो मैं एनवलप ले ली, लेके मैं वापस आ गई। आते समय मुझे थोड़ा भारीपन जैसा महसूस हुआ, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, सबको ठीक ही था, सुबह से इतना भारी क्यों लग रहा है। घर जाते ही मेरे फादर ने नोट किया, बोले क्या हुआ तुमको, क्या ऐसे क्यों लग रहा है। मैंने कहा देखो ऐसा लग रहा है कि ये क्या करियर मैंने चूज किया है। वो लड़की अभी तक दुखी है, पर वो केस के लिए पैसे लेकर आ गई, मैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा रिजल्ट है, कोई दुखी है। अब देखो कोई डॉक्टर है, जाके उनको दवाई देंगे तो वो ठीक होंगे, उनको पैसे लिए तो अच्छा है रिजल्ट है, कोई टीचर है पढ़ाए उनको नौकरी मिली इनके लिए अच्छा है, तो ये क्या है जॉब है जो कोई दुखी है अभी तक परेशान है और हम तो उसके लिए फिर उसके आधार से कमा भी जा रहे, तो ये कैसी कमाई है। मुझे ऐसा अंदर से लगा ये राइट नहीं है, उसके लिए पैसे लेना राइट नहीं है। तो मैं सेंटर चली गई थी, शाम को कभी कभी जाती थी, तो चली गई जाके मैंने कहा पहले अपने आप को भरना है, किसी को मदद करने के लिए अपने आप को भरना है। तो मैं जाकर मेडिटेशन रूम में बैठ गई, बैठ के योग लगाने शुरू करी। तब भी वहां की बहन जो है, जो निमित्त बहन है जो हमारी भी कोर्स कराई है, तो वो आके कहने लगी तुम थोड़ा बाहर आ सकती, एक लेडी है एक बहन है वो रो रही है, वो दुखी है, उनके साथ तुम बैठेगी। मैंने कहा ठीक है, बैठ के देखो कि उनको दवाई की जरूरत है या बस ऐसे सिचुएशन से उसको माना दुख होगा कि मेडिटेशन से कर सकते, मेडिकेशन चाहिए कि मेडिटेशन चाहिए, तो बैठ के तो देख। तो मैं उनके साथ बैठ के थोड़ा बात की, उनकी बात भी सुनी, हमारी बात भी वो सुने, सब हो गया, वो बहुत माना खुशी में आ गई, वो चली भी गई घर। और फिर हम घर जाते हमारे अंदर जो एनर्जी आ गई, उनके अंदर आई वो अलग बात है, हमारे अंदर इतनी उमंग था, इतनी शक्ति, इतनी अच्छी माना, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट डे वहां की जो बहन को मैंने पूछा, बहन जी ये क्या हुआ कि मुझे वहां क्लिनिक से मैं आई तो एकदम भारी हो गई और यहाँ इनके साथ मैं बैठी तो मुझे इतना अंदर से शक्ति मिली, इतना अच्छा लगा, तो क्या मैं अच्छी अच्छी बातें सोच के उनको समझाई सुनाई इसलिए मेरे अंदर इतनी शक्ति और उमंग उत्साह आ गया, क्या क्या हुआ। तो बहन ने कहा नहीं ये तुम्हारा कोई एफर्ट नहीं है, ये वो जो माता है जिनके साथ तुम बैठी वो तुमको दिल से दुआएं दी। उसने कहा देखो समय निकाल के ये बैठ के मेरी बात सुन रही है, सुना रही है, समझ रही है, तो उसने दिल से दुआएं दी तो तुमको बहुत अच्छी शक्ति आ गई। मैंने कहा ये तो जबरदस्त कमाई है, ऐसी कमाई तो कहाँ मिलेंगी। हमने कहा फिर वो हमको करना ही नहीं है, वो क्लिनिक में जाके वो सब करना है, यहाँ इस प्रकार की कमाई हमको करना है। फिर हमने वो निर्णय लिया। फिर हमने भगवान को कितना ना हमने थैंक्स किया कि अच्छा हुआ हमको वो सीट नहीं मिला। वो सीट मिलता तो वहीं फंसे रहते हम तो, है कि नहीं। कितना ड्रामा में कल्याण है, हर सीन में टाइम लगता है, टाइम लगता है समझने के लिए, परंतु है उसमें कल्याण। इसके लिए इसीलिए ये जो ड्रामा को दिखाने के लिए एक साइन बनाते हैं, ये साइन जब भी कोई गृह प्रवेश हो या किसी की शादी हो या गाड़ी का जो इनॉग्रेशन हो, जब भी वो जो साइन है वो लगाते हैं। कहते वो लगाने से है ना आपका जो भी जो कुछ भी करते उसमें लाभ ही लाभ होगा, ऐसे कहते। पर कई बार हमने देखा है वो साइन लगाने के बाद भी बिजनेस में घाटा पड़ा, घर में प्रॉब्लम हुए और डिवोर्स भी हुए। मतलब वो साइन लगाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, परंतु उसके पीछे जो अर्थ है वो समझने से हर घाटे में आपको लाभ दिखाई पड़ेगा। हर कल्याण जैसा लगता है बाहर से, पर उसमें कल्याण समाया हुआ आपको दिखाई पड़ेगा और समझ में आएगा। जो वो जो साइन है वो है स्वस्तिका, आपको वहां दिखाएंगे अभी, दिखाए। तो ये जो स्वस्तिका है ये है स्व का अस्तित्व, स्व का अस्तित्व माने जर्नी, द ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ द सोल। आत्मा का जो जर्नी है वो स्व का अस्तित्व है, वो चक्र है। आप देखेंगे चक्र के समान ऐसा है। पहला जो पीरियड है आप देखेंगे वहां, वहां साइन ऐसा है, अब देख दिखाई पड़ रहा है ऐसा है। स्वस्तिका का फर्स्ट सीन गोल्डन है, गोल्डन एज, स्वर्णिम युग, सतयुग, उसमें ऐसा है। माना इसका अर्थ है कि जो भी वहां रहते थे, ये समय की बात है, 1250 ईयर्स की बात है, वो गोल्डन पीरियड है आत्मा के लिए। और जो भी वहां रहते हैं रहते थे वो देने वाले थे, लेने वाले नहीं थे, देने वाले देवता थे, इसलिए ऐसा दिखाते हैं, ऑलवेज गिविंग। कहते हैं वो समय पे जो भी वहां रहते थे वहां कोई जेल नहीं, कोर्ट नहीं, हॉस्पिटल नहीं, डिवोर्स नहीं। तब सोचो जैसे आप देखेंगे 100 साल पहले इतनी बीमारियां ठीक है, अभी तो कितनी बीमारियां बढ़ गई, हर घर में इनको कैंसर, उनको कैंसर, हर व्यक्ति को है। थोड़े साल पहले तो ऐसा नहीं था ना, तो आप समझो 1000 साल पहले, 2000, 3000 साल पहले क्या बीमारियां, कुछ भी नहीं है। अब आजकल कितने डिवोर्स है, जहां देखो डिवोर्स है। दो दिन में परसों कोई बता रहे थे बहन जी आज उनकी शादी हुई, कल उनको डिवोर्स की बात चल रही है। देखो शादी किए नेक्स्ट डे एक दूसरों को मारे। तो ये सब जो भी है आप देखेंगे सत्युग में इतने प्यार से शांतिपूर्वक ऐसे सभी वहां रहते थे। तो वो समय जो है देवी देवताओं का राज्य था, तो इसीलिए वहां पवित्रता हाईएस्ट थी, तो संपत्ति भी होंगी, शांति संपत्ति सब होंगी। तो ये फर्स्ट सीन है 1250 ईयर्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे द साइन इज लाइक दिस, सेकंड त्रेता युग सिल्वर एज, माना ये थोड़ा 2% कम हुए, जितनी प्यूरिटी की पावर उसमें 2% कम हुए, फिर भी अभी भी वही, नो जेल्स, नो कोर्ट्स, नो हॉस्पिटल, नो बीमारी, नथिंग, दुख का नाम निशान नहीं है ऐसा समय। ये भी 1250 ईयर्स के होंगे, तो दोनों मिला के 2500 वर्ष, बिल्कुल एब्सोल्युटली नो सोरो नो पेन। जो भी वहां रहते थे वो जैसे सुखदान कहते थे, खुशी में और बहुत पेमालू, एक दूसरों के प्रति बहुत प्यार स्नेह से रहते थे। तो ये 2500 वर्ष की जो बातें मुस्लिम लोग कहते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग कहते हैं पैराडाइज या हेवन, हम जैसे हिंदू में जैसे कहते हैं बहिष्ट स्वर्ग, तो ये समय था, ये कोई स्वर्ग आकाश के ऊपर नहीं है, यही था, यही राज्य करते थे, बहुत सारे वहां रहते थे, उनको देवी देवताएं, हम आज दिन तक उनको याद करते, आज दिन तक उनकी हम पूजन करते हैं, क्योंकि हम वो सभी हमारे पूर्वज हैं। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे उनके गायन में तो वैसे वो रहते थे। तो 2500 वर्ष के बाद आप देखेंगे तीसरा जो पार्ट है, दैट इज ऑल्सो 1250 ईयर्स, और यहां आप देखेंगे वो साइन ऐसा है ना, माना जो भी वहां आ गए, नीचे उतर के आ गए, उनके अंदर इतनी प्यूरिटी अभी नहीं है, नहीं रहा, इतनी पवित्रता भी नहीं रही, तो इसीलिए पुकारना शुरू हुआ है। क्योंकि सत्युग त्रेता में वहां कोई भगवान को पुकारते नहीं है, क्योंकि ये जो कबीर का दोहा है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में जो सिमरन करे उनको दुख काहे को होए, ऐसे वो समय पे कोई भी भगवान को याद ही नहीं करते सत्युग त्रेता में, क्योंकि दुख का नाम निशान नहीं है ना, कोई अप्राप्त तो कुछ भी है नहीं ना। अभी आप देखो ये द्वापर युग या कॉपर एज जिसको कहते, उसमें पुकारना मांगना शुरू हो जाए, भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे ये दो, ऐसे पुकारना शुरू हो जाता है। तो वहां से भक्ति की शुरुआत होती है, और भक्ति करते मंदिर बनाना सब वहां शुरू होता है। वही समय पे आप देखेंगे फर्स्ट अब्राहम आते हैं, और दिखा पड़ रहा है ना उनका चेहरा, दिखा है उनका जो धर्म है जुडाइज्म, जो लोग होते हैं ना, तो वहां अब्राहम आते हैं। अब्राहम उनके आत्मिक बल से अपने बल से एक धर्म स्थापन करते, क्योंकि जहां डिमांड है वहां सप्लाई होंगे कि नहीं, पुकार रहे हैं भगवान करके, तो अलग अलग सभी अपना अपना आके धर्म के प्रचार जरूर करेंगे। तो उनके बाद आते हैं जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट की आत्मा वहां आती है अब्राहम के बाद, उनका फिर क्रिश्चियन धर्म स्थापन होता है उनके बाद, फिर उसके बाद जो है आते गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा के बाद आते प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद तो द्वापर के बहुत एंड में आते, आके उतना मुस्लिम धर्म स्थापन करते, तो उनका चेहरा तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि उनका पेंटिंग ही नहीं है। उन्होंने कहा जीसस क्राइस्ट के साथ जो हुआ हमारे साथ नहीं होने चाहिए, उन्होंने कहा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का फोटो लेके सभी उनको ही भगवान माने लगे, तो उन्होंने कहा मेरा फोटो, मेरा जो पेंटिंग नहीं निकालो, क्योंकि सभी मेरे में फंस जाएंगे, तो मेरा फोटो, तो उनका पेंटिंग है नहीं, वो कैसे दिखते किसको पता नहीं। तो ये जो है, ये अलग अलग धर्म जो है, ये सब द्वापर युग में आए, अपना अपना धर्म स्थापन करे, और जो जो आत्माएं जिन जिन को वो जो गुण का जो भी है, जो धर्म स्थापक के ऊपर वो गए, वो धर्म में चले गए। तो ये द्वापर युग में हुआ। ये द्वापर युग में होने के बाद जो वो समय बीत गया, फिर आए कल युग, कलह कलेश, दिस इज द टाइम ऑफ सफरिंग। नहीं चाहिए तो भी होता है द्वापर युग में, फिर भी क्रोध आता है थोड़ा बहुत, जो भी है कारण तो होता है। चलो हमारे देश पर वो आकर वार कर, हम भी करेंगे, हमारा देश की रक्षा करें, ऐसे कोई बात होती है कारण से थोड़ा बहुत वो करते हैं। परंतु यहाँ आप देखेंगे कलयुग में बिना कारण क्रोध, खूने ना है खेल, मना जैसे किसी को मार देंगे और कहें क्यों किया, बोले बस मेरे दिल हुई बस, अरे क्यों बम डाले, बस मेरे दिल हुआ, बम डाल देंगे उसमें क्या, मना जैसे कोई कारण नहीं, हर चीज हम खुद करते रहो और भगवान पर डाल देते, भगवान की ये डायरेक्शन है कि हमको ये करना है, इसलिए हाथ वहां दिखाते ऐसे, मना करो खराब और भगवान को ब्लेम करो। और हाथ उठता है वायलेंस के लिए यहाँ कलयुग में। तो ये कलयुग में बीमारियां, दुख, दर्द इतना बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। अभी का समय क्या है अब बताओ, सत्ययुग है, आप कहेंगे सत्ययुग है, हाँ यस और नो, क्या है अभी का समय क्या है, हाँ कलयुग है ना, ये तो कलयुग है, क्योंकि किसको दुख नहीं है बताओ, कोई ना कोई प्रकार का दुख है, छोटे बच्चों में भी इतना दुख है, मैं क्या बताऊं, बहुत दुख है। तो ये कलयुग है, तो कलयुग का अभी अंत है, अंत हो गया, वे अंत के बाद जो लास्ट जो समय है आप देखेंगे, ये भी 1050 इयर्स का समय है कलयुग, पर कलयुग के अंत में जो 100 साल वर्ष का जो है वो है संगम युग, इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। अभी संगम युग चल रही है, ये परिवर्तन युग है, इट्स एन एज ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट बना सब कुछ, जो भी पास्ट का जो भी हिसाब किताब सब फिनिश करने का ये समय है। पुरुषोत्तम ना पुरुषों में उत्तम बनने का ये युग है, कल्याणकारी है, मतलब हर चीज जो होता है इसमें कल्याण ही समाया हुआ है, इसलिए ये कल्याणकारी संगम युग है, क्योंकि समय और परमात्मा दोनों की मदद मिलती है अपने आप को परिवर्तन करने के लिए, फिर से वही देवी गुण जैसे देवताएं संस्कार हमारे में लाने के लिए 100% मदद अभी मिलती है संगम युग में। अभी हम संगम युग में हैं, कहते हैं कुंभ मेला दिखाते हैं, कुंभ मेला में कहते हैं कि वो जो सागर है और जो नदियां हैं वो मिलती है, तो पाव उसमें डुबकी लगाएंगे तो हम पावन बन जाएंगे। डुबकी लगाने से कोई पावन नहीं बनते, क्योंकि कर्म कौन कर रहा है, शरीर नहीं आत्मा कर रही है, तो शरीर को कितना भी आप दो करो पावन किसको बनना है, आत्मा को बनना है ना, शरीर को थोड़े ना बनना है। परंतु उसका अर्थ है सागर मना परमात्मा एक ही जगह पे है, और सागर है हर गुणों का सागर एक जगह, हम नदियां हैं जन्म मरण, परमात्मा कोई जन्म मरण में नहीं आते, एक ही जगह पे होते, हम जन्म मरण मरण लेके जैसे नदी जैसा बहते, फिर उनको मिलते हैं, जब मिलते हैं उनको डायरेक्टली, कोई भी मीडिएटर की जरूरत नहीं, कोई गुरु कोई भी नहीं जरूरत है, डायरेक्टली उनको हम जब मिलते हैं उनसे हम शक्ति लेते हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, तब वो पावन बनने का समय है। इसलिए वो कुंभ मेला करके कहते, वो पानी की बात नहीं, वो समय की बात है। एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर अपने आंध्रा में है, उसका नाम है श्री शैलम, कई आप लोगों में कोई सुने होंगे। और श्री शैलम में ही एक ही मंदिर है जिसमें आपको संगम युग का दिखाते हैं, बहुत सुंदर रीति से वो कहते हैं आप नीचे बैठो थोड़ा, और लिंग होता है ना शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग के ऊपर वो कहते हैं अपना जो फोरहेड है ना उसको टच करो, कहां भी ऐसा नहीं होता वहीं होता है, आजकल थोड़ा रोक दिए क्योंकि टू मच क्राउड है, तो वहां ऐसे करके टच करते हैं, मना आत्मा परमात्मा जब मिलते हैं वही संगम युग का समय है उनसे, क्योंकि अभी कलयुग में थ्रू जाने का तो फिर क्या है ना, बहुत एनर्जी जाती है, क्योंकि किसी द्वारा हम देखे तो इतनी शक्ति कहां मिलेगी, इसलिए डायरेक्टली उनसे मिलना और उनसे लेना है। ये मोस्ट ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज, और हम अभी कॉन्फ्लुएंस एज में है। अभी मोर देन 80 इयर्स हो गए कॉन्फ्लुएंस एज के लिए, अब नहीं तो कभी नहीं। अभी जो समय मिला इसमें जो आपको पुरुषार्थ करना है, जो हमको परमात्मा से वो कनेक्शन जोड़ के जो शक्ति लेना, जो विक्रम विनाश करना, जो उनसे वर्षा लेना, अभी का ये समय, अभी करने का समय है। नाउ और नेवर कहते हैं ना, क्योंकि आप देखेंगे दुनिया में भी ऐसा, ये संगमयुग का समय ऐसा चल रहा है बहुत समय से। हमको पता है थोड़े साल पहले जब हम स्कूल में थे, कोई भी भक्ति का कुछ भी दिखा देते लोग ऑफ कर देते थे टीवी, कुछ भी भक्ति का दिखाओ, नहीं कोई किसी को सुनने की इच्छा ही नहीं रहती थी। आजकल आप देखो सब भी को इतनी इंटरेस्ट है, भक्ति के ही कितने चैनल से आप बताओ, कितने सारे हैं। हम यंग यंग लोग को मिलते हैं, हम जब ट्रैवल करते हैं ना, यंग यंग लोग आके कहते बहन जी हम शिवानी बहन को सुनते हैं टीवी पे, इतना अच्छा सुनाती है, माना इतनी उत्कंठा है, आध्यात्मिकता की ओर इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्यों? दिस इज अ साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये परिवर्तन का समय अभी है। वहां एक जैसा चरित्र लिखते हैं ना, जैसे भविष्य का लिखते, ऐसा एक है जिन्होंने लिखा है साउथ में, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने लिखा है कि कलयुग का अंत वो कहां, कोपर द्वापर युग में, नहीं नहीं द्वापर युग नहीं, कलयुग के बिगिनिंग ने लिखा था कि कलयुग का अंत करके आपको कैसे पता पड़ेगा, उसके लिए जो चिन्ह है आप बताएंगे करके वो बुक लिखा हुआ है, उसमें है उन्होंने लिखा, जब आप पानी खरीदना शुरू करेंगे तो आप समझ लेना ये कलयुग का अंत है। अभी पानी खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे, खरीद रहे ना, तो वो तो रहे। कहते हैं जब स्त्री अपना वर मांगेंगे, माना स्त्री स्वयं जाके कोई किसी को प्रपोज करेगी, चलो मुझे शादी करो, ऐसे करके करेंगे, तो वो कलयुग का अंत है। माना पहले कोई ऐसा नहीं करते थे, स्त्री और स्त्री और पुरुष शादी करेंगे तो वो कलयुग का अंत है। वो हो रहा है ना अभी अमेरिका में, तो वो लीगल है, तो शादी भी कर सकते अच्छी तरह। स्त्री का हेयर स्टाइल पुरुष का होगा, पुरुष का हेयर स्टाइल स्त्री का होगा, ऐसे भी लिखा है, ऐसा भी होता है। गलत और राइट की बात नहीं है, वो जस्ट चिन्ह है, तो वो साइन है कि ये कलयुग का अंत है। अभी आप देखो ये कलयुग का अंत, अभी संगम युग में आ गए, ये परमात्मा का गोद है, संगम युग है परमात्मा का गोद, तो इसमें आप जैसे शरण में आ गए, उनके शरण में आ गए, उनकी पढ़ाई आपको पढ़ना है। अभी ये जो भी ज्ञान आप सुन रहे हो, जो भी बहने भाई आपको सुनाते जा रहे, ये हमारा खुद का तो ज्ञान नहीं है, ये स्वयं परमात्मा का है। उन्होंने ही ये ज्ञान हमको दिया, उन्होंने ही ये इशारा दिया कि अभी ये समय नहीं है, यही समय है अभी हम अपने आप को बना लें, अभी पावन बनना है। क्योंकि स्वयं को पावन बनने बगैर हमारा लाइफ में सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, तो शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत परमात्मा का अंग संग उनके साथ रहेंगे, उनकी याद में रहेंगे, तो हर मुश्किल आप पार कर सकेंगे। इसलिए आज का जो ये जो क्लास है सृष्टि चक्र के ऊपर, ये दिखाते हैं श्री कृष्ण और श्री विष्णु के हाथ में, विष्णु माना लक्ष्मी नारायण दोनों मिला के विष्णु है, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते, कहते उन्होंने ऐसे ऐसे उन पर असुरों पर डाले तो उनका दे ही कुड बी हेड, माना उनका सिर काट दिए। अब आप देखिए कोई भी ऐसे हिंसा से किसी की पूजा हो सकती है? कोई हिंसा करेंगे उनका पूजा करेंगे? चलो कोई भी खराब आदमी हो, बहुत खराब आदमी, जाकर उनको मार देंगे, क्या कोई हमारे पूजा करेंगे? वो तो जेल में डालेंगे, ये क्या तुमने किया है ना। तो श्री कृष्ण जो देवी देवता है उनकी इतना हम पूजा कर, वो क्यों किसी को ऐसे मारेंगे? भले असुर हो फिर थोड़ी ना रहम दिल होगा, यही गुण है ना। तो रहम करने वाले किसी को मार सकते? वो हो ही नहीं सकता, नहीं। परंतु उन्होंने अपने अंदर के असुरों को मारा है। अब देखिए कोई कहेंगे किसी को भी मारना बड़ा इजी है, एक थप्पड़ मारना किसी को कितना इजी है, एक सेकंड में आ जाता। अपने अंदर की क्रोध को मारना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, यू नीड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। कोई कहेंगे कि बंजी मेरे को सिगरेट स्मोकिंग का प्रॉब्लम है, कोई कहेंगे मेरे को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, तो वो छूट सकता है। हमारे पास कितने भाई, तो इतने उनकी आदत होती थी, यहाँ आके योग अभ्यास करके पूरा उनका गया, उनके जो भी ये आदतें निकल गई, वो कोई मुश्किल नहीं है, निकल सकता है, एक साल में भी निकल सकता है, एक दो महीने में भी निकल सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। परंतु कोई भी ये नहीं कह सकता दो हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में मेरा क्रोध में निकल दूंगा, नहीं हो सकता ऐसे। बोलने में इजी है, इतना शक्ति लेना पड़ता है। इसीलिए उसमें दिखाते हैं वो चक्र, ये सुदर्शन चक्र नहीं है, स्वदर्शन चक्र, स्व को दर्शन करने वाला ये चक्र, कि आत्मा का कैसा हमारा चक्र, कैसे हम चक्र लगाकर आए हैं। इसे स्वस्तिक के बीच में डॉट्स लगाते, इसे देखा है ना, डॉट ऐसे ऐसे, मानो आत्मा का, ये आत्मा का ये जर्नी है। दूसरी रीति से दिखाते हैं कि जो मंदिरों में परिक्रमा लगाते उसको क्या कहते हैं, राउंड राउंड जाके फिर ऐसे करते, फिर राउंड परिक्रमा लगा के फिर ऐसे करते ना, उसका अर्थ यही है कि मैं चक्कर लगाकर आई हूँ, मैं चक्कर लगाकर आई हूँ, भगवान मुझे ये देवता जैसे फिर से बनाओ। क्योंकि हम नीचे उतर के यहाँ तक आ गए, हमारे अंदर वो पवित्रता जो था वो समय पे अभी है नहीं ना, तो अभी मुझे फिर से देवी देवता जैसा बनना है। नर ऐसे कर्म करे जो नर नारायण बने, और नारी ऐसे कर्म करे जो लक्ष्मी बने, हमारा लक्ष्य है, ऐसा हमको बनना है, इसलिए ऐसे परिक्रमा लगा था। और कोई कारण नहीं है, कोई तो पानी में डुबकी लगा के भी समसॉल्ट करते हैं, ऐसे राउंड राउंड ऐसा जाते हैं, कोई 8 बारी करते, कोई 15 बारी करते, कोई क्या भी करते, कारण रीजन इज ओनली वन कि हमने चक्र लगा कर है। आरती भी लगाते हैं कि दीप, वो कपूर से दीप लगा के फिर ऐसे ऐसे देवताओं को ऐसे करके हमारे पास आते, हम भी ऐसे ऐसे करके उसमें पैसे डालते, उसका अर्थ क्या है कि आत्मा ने चक्र लगा कर आई है, चक्र देवताओं को दिखाते कि वो चक्र लगाइए, देवताओं की आत्मा ही तो चक्र लगाइए ना, तो चक्र लगाइए, चक्र लगाए तो हमारे पास आते हैं, तो उनको वो दीप को टच करके हम भी कहते हाँ हम मानते हैं, हम ही वो आत्मा है, हम ही वो आत्मा है। अभी तो ऐसे 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 कुछ कुछ करते हैं, परंतु मीनिंग इज ओनली वन, आई एम द सेम सोल हु गॉन राउंड द साइकिल एंड आई हैव कम टू द एंड ऑफ द साइकिल, अभी मुझे अपने आप को बनाना है, पावन बनना है, उसका अर्थ वही निकलता है। तो आज का दिन आपको ये होमवर्क देते कि आप सोचो, मैं संगम युग में आ गई, मैं संगम युगी आत्मा हूँ, स्वयं परमात्मा का संतान हूँ, अभी ये परिवर्तन युग है, मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि परमात्मा और समय दोनों मेरे साथ है, जो मैं सोचू मैं कर सकती हूँ, जो बनना है मुझे देवी गुण धारण करना है, जो शक्तियों को अपनाना मैं कर सकती हूँ, इस पर आप आज विचार करो। ओके, आज जाने का दिन है, परंतु जाते जाते ये श्रेष्ठ संकल्प सभी करके जाओ कि मुझे बनना है, और जो भी बाकी जो कोर्स है, क्योंकि ये तो 4 दिन का ही आपका कोर्स हुआ और 3 या 4 क्लासेस है, तो आप सेंटर पे जाएंगे, तो सेंटर पे क्या है ना, बैन या आप वन टू वन भी सुनाएंगे। परिवार के साथ जाने तो परिवार पूरा जाके भी ले सकते, परंतु सेंटरों में ऐसा है कि बैन आपको वन टू वन कराएंगे। तो आपके जो भी प्रश्न होते हैं, आपके जो भी माइंड में अभी तक जो सुने हैं आप नहीं पूछ पाए, यहाँ वहां बैन के पास बैठ के आप अच्छी तरह यू कैन शेयर एंड आस्क एंड लर्न। तो सब कुछ ये पढ़ने के बाद, ये सब कुछ सुनने के बाद फिर हमको पढ़ाई के समय शुरू होती है। इसमें रोज ये ज्ञान सुनने का, जैसे शरीर के लिए जैसा आहार, जैसे आत्मा के लिए ज्ञान रोज चाहिए। जैसे आज अब यहाँ बैठ के सुन रहे हो तो कितना अच्छा लगता, बुद्धि यहाँ आने जाती है, अच्छा लगता है। आप सोचो रोज थोड़ा बहुत एक पंद्रह मिनट ऐसा कुछ सुनते 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 आत्मा में बहुत बहुत परिवर्तन आता है। आत्मा को चाहिए, इट इज वेरी हंग्री, तो सोल इज वेरी हंग्री, इसलिए रेस्टलेस होते हैं ना। तो ज्ञान चाहिए, रोज कुछ तो कुछ चाहिए। तो ये कोर्स फिनिश करो, फिर उसके बाद हम कहते ज्ञान जो रोज सुनते वो मुरली है जो बाबा सुनाते थे, तो वो सुनो। जीवन बनाओ, अभी जीवन बनाओ, अच्छी तरह बनाओ, आपको देख के अनेक बनेंगे, बहुत बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।
जो मन वचन कर्म से पवित्र है